शांति। तो आज का हमारा विषय है प्रारब्ध और पुरुषार्थ। वास्तव में आज के इस टॉपिक की प्रेरणा कल के प्रश्न उत्तर से आई, लेकिन आज की मुरली में मम्मा ने इस पर थोड़ा हाईलाइट किया कि दुनिया में लोग सोचते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो फिर इस दुनिया में फिर से आएंगे और भोगेंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि दुनिया बदलने वाली है, विनाशी दुनिया की प्रारब्ध भी विनाशी है, ऐसे मम्मा ने हाईलाइट किया। और बाबा ने क्या हाईलाइट किया कि ज्ञान की बरसात हो रही है और इस ज्ञान की बरसात से तुम क्या बन रहे हो, पावन बन रहे हो। तो तुम अभी पावन बन रहे हो और बाकी सब तो अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके अपने अपने धाम में चले जाएंगे। तो ऐसे अकाउंट को लेकर आज की मुरली में ये बात रही और मुख्य प्रेरणा तो कल के प्रश्न उत्तर से आई थी हमें कि जब सब कुछ पहले से ही फिक्स है तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें हम, है ना। तो प्रारब्ध माना क्या, प्रारब्ध माना क्या, भाग्य, नियति, किस्मत, फॉर्चून, डेस्टिनी। तो सवाल क्या था कि जब सब कुछ पहले से ही फिक्स है पुरुषार्थ क्यों किया जाए, जिसको दूसरे शब्दों में कहेंगे एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, तभी तो डेस्टिनी शब्द बना। लेकिन जब हम कहते हैं कि सब कुछ फिक्स है, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, तो इसके बाद ये स्टेटमेंट सुनने के बाद, पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन भी उठना चाहिए कि किसके द्वारा प्रीडेस्टिन्ड हुआ है। जैसे भाई ये किताब लिखित है, किसके द्वारा लिखित है, लिखित तो है पर किसके द्वारा लिखित है। तो प्रीडेस्टिन्ड तो है पर किसने प्रीडेस्टिन्ड किया, किसने किया। अगर मैं कहती हूँ मेरा भाग्य पहले से ही प्रीडेस्टिन्ड है, पहले से ही फिक्स है, पहले से ही लिखा हुआ है, पहले से ही बना बनाया है, तो किसने किया मेरे भाग्य को पहले से ही तय, मैंने स्वयं ने। क्योंकि भाग्य, क्योंकि बाबा हमें तीन कालों की बात करते हैं। आत्मा को हम सत्य अगर कहते हैं तो उसका आधार क्या है, पहले दिन का जब लेसन देते तो हम यही कहते हैं ना, आत्मा सत्य है और ये शरीर असत्य है। तो कैसे एक्सप्लेन करते हैं सत्य और असत्य को, कि जो तीनों कालों में कायम रहे वो सत्य, और जो एक काल में है दूसरे काल में नहीं है उसको असत्य कहेंगे, है ना। तो ये जो हमारा भाग्य या प्रारब्ध और पुरुषार्थ की बात है, ये तीन कालों से रिलेटेड है, कोई एक काल की बात नहीं है। जिस चीज को हम भाग्य कहते हैं वो भी पुरुषार्थ ही था पास्ट में, जिस चीज को आज हम भाग्य कह रहे हैं वो पास्ट में हमारा पुरुषार्थ था, अर्थात हमारा कर्म था। वही कर्म आज, पास्ट वाला कर्म आज प्रेजेंट में मेरे सामने भाग्य बनकर आया है। अब जब मेरे सामने भाग्य बनकर आया है तो हो सकता है वो जो भाग्य है मुझे अनुकूल प्रतीत हो रहा है या प्रतिकूल प्रतीत हो रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है, प्रिय लग रहा है या अप्रिय लग रहा है। क्योंकि पता नहीं क्या कर्म किया था उसके अनुसार आता है वो, तो जो भी आया है वो मेरे पास्ट के कारण आया है और हम हर घड़ी कर्म किए जा रहे हैं। इवन आज अगर मेरे सामने भाग्य आया भी है तब भी तो कर्म करना है। भाग्य ने हम सबको इकट्ठा चांस दिया मधुबन पांडव भवन की भर्ती करने का, ये सबका मिला जुला भाग्य है कोई कि सबको एक साथ भाग्य के रूप में डेस्टिनी के रूप में भर्ती करने के लिए यहाँ आने की छुट्टी मिली और आप आ गए। लेकिन इसके साथ सिर्फ कर्म भी चल रहा है आपका, नहीं चल रहा है कि जो हमने पहले दिन आपको कहा था कि चार पांच दिन जो आप यहां पर हैं, जो भाग्य ने आपको प्रदान किए हैं कि हर जिम्मेवारी से मुक्त होकर आप यहां आए हैं, तो अपने अमूल्य समय का भरपूर लाभ उठाना। लेकिन जितने भी भाई बहने आए हैं 200 के 200, हर एक लाभ उठा रहा है पर हर एक का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा या नहीं होगा, और उसके आधार से हर एक की प्राप्ति अलग अलग होगी या नहीं होगी। तो जिस चीज को हम कह रहे हैं कि भाग्य पहले से निश्चित है तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें, नहीं, वो भाग्य भी मेरा पुरुषार्थ ही है लेकिन पास्ट का है, और वो निश्चित मेरे ही पास्ट का वो भाग्य सामने आया, पुरुषार्थ भाग्य के रूप में आया, मतलब वो पुरुषार्थ ही तो है। और इसलिए ये कभी नहीं बोल सकते हम कि जब सब कुछ निश्चित है तो पुरुषार्थ करने की आवश्यकता क्यों है। किसी और ने निश्चित किया होता तो बात दूसरी, मेरे भाग्य को मैंने निश्चित किया है, भगवान ने भी नहीं किया है। भगवान तो भाग्य लिखने की कलम देता है, अवसर देता है। वो बताते हैं ना एक कहानी की, एक सूर्य नगर नाम का राज्य था और उसका राजा भीम सिंह बहुत ही बुद्धिमान था और बहुत न्यायसंगत भी था, धर्म का पालन भी करता था, उसकी प्रजा बहुत सुखी थी, संपन्न थी। लेकिन उसको हमेशा एक कंसर्न, एक चिंता या दाद उसको लगी रहती थी, क्या मेरे मंत्री भी, क्या मेरे राज्य कर्मचारी भी धर्म संगत होकर अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। इसके लिए वो उनकी परीक्षा लेता है, तो अपने तीन मंत्रियों को बुलाता है कि अपना अपना थैला लेकर कल सुबह मेरे सामने प्रस्तुत होना है। तीनों अपना अपना थैला लेकर राजा के सामने प्रस्तुत होते हैं और राजा आदेश करता है कि जाओ तीनों और इन थैलों को ताजे अच्छे रसीले फलों से भर कर लेकर आओ। तीनों आदेश पाकर के तीन अलग अलग बगीचों में जाके प्रविष्ट हो गए, दाखिल हो गए। अब ये जो तीन मंत्री थे, भाग्य ने तीनों को अवसर दिया उस न्याय संगत राजा का मंत्री बनने का। इकट्ठा आप सबका भाग्य एक साथ यहाँ भक्ति करने का अवसर मिला है। उन तीनों मंत्रियों का भी पास्ट का कर्म, पास्ट का पुरुषार्थ आज भाग्य के रूप में कैसे आया है कि तीनों ही एक अच्छे राजा के पास मंत्री के रूप में नियुक्त है। अच्छी पोस्ट होती है मंत्री, और तीनों को सेम काम दिया गया है, लेकिन तीनों नेचर वाइज डिफरेंट थे। एक था स्वामी भक्त, दूसरा था लापरवाह, तीसरा था कामचोर प्लस लापरवाह। पास्ट के कर्म ने तीनों को एक पद दिलाया है, लेकिन वर्तमान में नेचर सबकी अलग अलग है। आप सभी आए हैं ना यहाँ पे, सभी की अलग अलग है ना, उसी अनुसार अर्जित करेंगे ना यहाँ से। तो तीनों गए हैं, जो स्वामी भक्त था उसने अपने राजा के शब्दों का अक्षरशः पालन किया, नहीं मुझे राजा ने आदेश दिया है ताजे अच्छे रसीले फलों से थैला भर कर लाने के लिए। और डेफिनेटली जब बाग में आप जाएंगे तो कुछ कच्चे भी होंगे फल, कुछ सड़ गए होंगे, कुछ गल गए होंगे, कुछ में अभी इतना रस नहीं भरा होगा, वैरायटी तो होगी ना। तो उसमें से छांटने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा, और दोपहर के टाइम में धूप लगेगी नहीं लगेगी, उसने उसकी परवाह नहीं की। उसको परवाह थी राजा के शब्दों की, और इसलिए उसने पूरी मेहनत करके थैले को ताजे अच्छे रसीलों फलों से भर दिया। लेकिन जो दूसरा था लापरवाह, उसको राजा के शब्दों की इतनी कोई परवाह नहीं थी। तब भल राजा ने कहा है, लेकिन कोई थैले खोल के वो देखेगा, थोड़ी ऊपर की ही दिख गए अच्छे तो समझ लेगा ना अच्छा है, तो ऊपर ऊपर में अच्छे डाल दूंगा, नीचे तो मेरा टाइम बच जाएगा ना, थोड़ा टाइम बचेगा, धूप में खड़ा हूं, क्योंकि मंत्री है भाई, वो कितने सुख सुविधाओं में रहते होंगे वो, हाँ कभी जाते क्या थैला उठा के खुद लेने, वो तो उनके भी अंडर में कितने कर्मचारी होते हैं उनको सब सुविधा देने के लिए। सोचता है इतनी देर कौन खड़ा रहेगा धूप में, तो कहता है ठीक है ना, थोड़े ऊपर में ताजे भर लूंगा रसीले, बाकी नीचे जो सामने आ रहा है भरते जाओ। तो ऐसे ही किया उसने। और तीसरा तो सिर्फ लापरवाह भी नहीं था, कामचोर भी था। तो उसने बोला, क्या इतनी पड़ी है एक एक एक, कोई राजा कोई देखने वाला भी नहीं है हमारे थैले को, बस एक दृष्टि भर डाल देगा और क्या करेगा। तो उसने फलों से तो भरा ही नहीं, वहां की घास फूस उठाई पड़ी थी भर के रख दिया। और तीनों अपना थैला भर के वापस आ गए राज्य में, लौट के राजमहल में। और अगले दिन उन्हें राजा के सामने पुनः पेश होने के लिए कहा गया। अपने अपने थैलों के साथ वो पेश हुए, और राजा ने सचमुच किसी के थैले की छानबीन नहीं की, लेकिन कहा ये सामने सेनापति को बुलाया, कहा ये सामने तीन अलग अलग कमरे हैं, इन तीनों को एक एक कमरे में भेज दिया जाए, और करीब 2-3 मास जो भी फिक्स किया उसने अवधि, ये इसी कमरे में रहेंगे, खाने पीने का प्रबंध आपको नहीं करना है, ये थैला इनको दे देना। समझ गए, समझ गए। जिसने काम छोरी की घास फूस भरी क्या खाया होगा, भूखमरी में 2-3 मास में उसकी हालत क्या हुई होगी, और जिसने आधे अच्छे आधे सड़े गले भरे तो आधे दिन तो अच्छे खाते रहा, लेकिन भूख में क्या नहीं खाता इंसान, वो भी खाता गया, बीमार पड़ गया, पीड़ा वाली जीवन से गुजरना पड़ा। और जिसने सारे अच्छे ताजे रसीले फल भरे थे वो तो 2-3 महीने आराम से गुजारे, और राजा के पास जब आए वो अपनी अवधि पूरी करके, राजा ने कहा ये स्वामी भक्त है और इसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। वो भूखा जो उसकी हालत बिगड़ गई थी, अब मंत्री पद संभालने लायक ही नहीं रह गया था, अपने आप को ही संभाल ले, जिसने बहुत पीड़ा से गुजारा वो भी इतना उस कंडीशन में नहीं था कि अच्छी से जाओ अपने घर में अपना जीवन जियो। तो भाग्य तो तीनों के लिए सेम आया था ना, तीनों एक ही राजा के मंत्री थे ना, तो अगर वो भी कहते ऐसे कि भाग्य से ये मिला है अब मैं पुरुषार्थ क्यों करूं, किया ऐसे तीनों ने अलग अलग किया, हाँ तीनों ने अलग अलग किया ना, तो रिजल्ट भी तो तीनों को अलग अलग आई ना। इसलिए ये कभी नहीं बोलना, क्योंकि वो जो भाग्य आया था वो भी मेरे ही पुरुषार्थ का फल था, और अभी जो भाग्य आया 2-3 मास के बाद, क्योंकि वो कर्म तो उसने 2-3 मास पहले किया था। हर पल हम वर्तमान से सरक जाते हैं, हर पल, वर्तमान सिर्फ आधे घंटे एक घंटे एक दिन को नहीं बोला जाता है, ये मोमेंट गुजरा माना ये पास्ट हो गया। तो जब राजा ने आदेश दिया था उनको भर के लाओ, भर के लाए थे, वो उस समय वर्तमान था ना उनका, लेकिन वही वर्तमान 2-3 मास के बाद उसका प्रेजेंट हुआ उस समय। तो ये क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ऐसे सृष्टि चक्र सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है। तो पास्ट के कर्म ने स्वामी भक्त को भी मंत्री बनाया, पास्ट के कर्म ने लापरवाह को भी मंत्री बनाया, पास्ट के कर्म ने कामचोर और लापरवाह को भी मंत्री बनाया, क्योंकि शायद पास्ट में अच्छी से किया होगा लेकिन वर्तमान में बदल गया है, और इसलिए वर्तमान पुरुषार्थ में गड़बड़ कर दी, और इसलिए उसका फ्यूचर रिवार्ड कम हो गया जिसने अच्छा किया, और इसलिए सर्कल में चलता है। इसलिए कभी नहीं कहना कि जब सब कुछ फिक्स है, किसके द्वारा फिक्स है, हमारे स्वयं के द्वारा फिक्स है। तो हमें पता थोड़ी है हमने क्या किया था पहले जो आज भाग्य, सिर्फ इन जनरल पता है अगर अच्छा आया है अच्छा किया होगा। आम का बीज बोया होगा तभी तो आम का पेड़ निकल के आया है, लेकिन अगर बबूल का पेड़ निकल के आया है तो बबूल बोया होगा। और कभी भी आप देखेंगे बीज अंधकार में ही होता है, फल रोशनी में होता है। और इसलिए हमें, हमने क्या कर्म किया था वो हमारे स्मृति से ओझल रहता है, हमें याद नहीं रहता है कि हमने क्या किया था और उसके लिए आज ये आया है। पर इन जनरल लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत ये कहता है, जैसा बोगे वैसा पाओगे। अगर ये एक लाइन याद रख ली तो चाहे वो मैं कहूं कि प्री डेस्टिन्ड है तो भी मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लूंगी कि भले प्री डेस्टिन्ड मेरे द्वारा ही तो था, अभी वो भाग्य कहला रहा है, लेकिन ये जिस चीज का भाग्य वो उस समय कर्म था, उस समय वो कर्म था मेरा, और उस समय शायद मैंने ये बात ध्यान पे नहीं रखी थी, अगर बुरा आया है तो, कि जो बोएंगे सो पाएंगे, उससे मैं अनभिज्ञ था और इसलिए अनजाने में जो आया वो मैंने कर लिया। इसलिए ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या थी कल के प्रश्न में, क्या पूछा था दूसरा प्रश्न, कि संस्कारों को हम परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, थोड़े समय वो परिवर्तन दिखाई देता है परंतु वापस पुराना फिर से आ जाता है, फिर हम थोड़ी कोशिश करते हैं, थोड़े समय के लिए परिवर्तन आता है और फिर वापस पुराने में आ जाते हैं। यही था कल का प्रश्न कि संस्कार परिवर्तन में मेहनत लग रही है। तो संस्कार की भी डेफिनेशन पहले दिन के लेसन में हम क्या देते हैं, कहां से बना संस्कार, कर्म करने से ही तो बना, सारा खेल तो कर्म का है, नाम भले संस्कार दे दिया पर वो संस्कार भी कहां से बना, कर्म न किया होता तो थोड़ी बनता संस्कार। भाई मन में विचार आया, बुद्धि ने निर्णय लिया, फिर कर्मेंद्रियों से कर्म किया, उस कर्म को रिपीटेडली किया, एक बार भी किया तो भी आत्मा पर छाप पड़ी पर उतनी गहरी नहीं पड़ी कि वो ऑटोमेटिक बन जाए, लेकिन बार बार करते करते वो छाप इतनी गहरी बन गई, वो निशान इतना गहरा बन गया कि उस तरफ अपने आप स्लिप हो जाते हैं। और इसीलिए कोई चीज पहली बार करते हैं अटेंशन देना पड़ता है, पहली बार ड्राइविंग करने जब चले थे, गाड़ी पकड़ के बैठे थे टू व्हीलर में या फोर व्हीलर में, खूब अटेंशन दिया था, लेकिन चलाते 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 हाथ बैठ गया, अब गीत भी गा रहे हैं, फोन भी अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए गाड़ी भी, क्योंकि अब कौन ड्राइव कर रहा है, अब मैं नहीं ड्राइव कर रही हूं, संस्कार ड्राइव कर रहा है। तो संस्कार भी एक तरीके से कर्म ही हुए ना, संस्कार भी एक तरीके से क्या है, कर्म ही है। पास्ट में कोई कर्म को बार बार रिपीट किया गया था, उसका निशान बना, उसको बोला संस्कार। अब ये जब परिवर्तन होने की बात आती है, परिवर्तन नहीं होते हैं या बहुत टाइम लेते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण जो है, हमने ज्ञान में आने से पहले शायद संस्कार परिवर्तन को इतनी बातें कभी सोचते भी नहीं थे, है ना, क्योंकि सोचते थे अरे ये तो इंसान का स्वभाव है गुस्सा करना, इसको क्या रोकना होता है। वो तो यहां आने के बाद पता चला ना, ये आसुरी संस्कार है और इसलिए हमें इन आसुरी संस्कारों को छोड़ना है, परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन इसमें जल्दी आए उसके लिए जरूरी है हम सोल कॉन्शियस स्टेज में रहे, क्योंकि देखो गुस्सा करने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं मानेगा कि मैं गुस्सा करता हूं, क्योंकि वो करता है भी नहीं, वो तो उसे हो जाता है, भाई जो चीज मैं सोच समझ कर करूं तो मैं कहूं हाँ कि मैंने सोच समझ कर किया, पर आदत संस्कार माना क्या कि आपकी फैकल्टी जो है सोचने की माइंड, आपकी जो फैकल्टी है निर्णय देने की बुद्धि, उसको आपने बाईपास कर दिया संस्कार बन जाने के बाद। वो तो अभी यूज में हो आ ही नहीं रहे, ऑटोमेटिक मोड में है ना, तो अपने आप आ रहा है, एक बिलीफ सिस्टम बना के रख दी है। अगर जैसा मैं चाहता हूं वैसा अगर न होवे तो गुस्सा आए ना। हर बार ऐसे ही किया था पहले कि जब मेरे अनुसार किसी ने काम नहीं किया तो मैंने सोचा इसको डांट लगाऊंगा ना तब ये सुधरेगा और तब वो मेरे अनुसार काम करेगा। तो ऐसा मैंने एक बार किया, दो बार किया, तीन बार, चार बार, पांच बार, तब मैं सोच सोच के कर रही थी क्योंकि मैंने क्या दिया अपने आप को, ये सुधरेगा थोड़ी ऐसे, इसलिए मुझे इसको डांटना ही पड़ेगा, इस पर गुस्सा करना ही पड़ेगा। और ये तब मैं सोच समझ के कर रही हूं, मतलब शुरू में मैं गुस्सा भी सोच समझ के कर रही हूं इस बिलीफ सिस्टम के साथ कि गुस्से के बिना ये सुधरने वाला नहीं है, इसलिए मैं सोच समझ के इस पर गुस्सा कर रही हूं। लेकिन अगर वो रिपीटेडली हो गया उसके बाद सोच समझ के करने वाले हैं, भाई मैंने किया नहीं, आप समझो ना मेरी आदत है ना। कितनी बार लोग यही कहते हैं आप क्यों मेरे गुस्से को इतना सीरियसली लेते हो, तो मैं क्या करूं, मैं खुद परेशान हूं अपने गुस्से से, आप समझो ना। क्योंकि ऑटोमेटिक मोड में है वो। तो अब बाबा ने हमें कहा कि तुम्हारे पास ओरिजिनल संस्कार भी तो है। सब पहले दिन का ही लेसन याद करना है, पूरा पूरा जो पुरुषार्थ है ना हमारा, वो पहले दिन के लेसन पर ही है हमारा। उस पहले दिन के लेसन की ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मांग रहा है हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं है। जब हमें संस्कार समझाए गए थे पहले दिन, तो हमें कहा गया था पांच प्रकार के संस्कार होते हैं, जिसमें से कहा गया कि एक है पूर्व जन्म के संस्कार, फिर दूसरे दो बताए कि माँ पिता से मिले संस्कार, खानदान से मिले संस्कार, और दूसरा कहा कि संग के रंग से मिले संस्कार या वातावरण से मिले संस्कार। तो जिसको हमने पूर्व जन्म के संस्कार कहा, जब हम उस पूर्व जन्म में थे उस समय भी तो माता पिता थे, उस समय भी तो वातावरण था, संग था, तो उस पूर्व जन्म में आज जिसको मैं पूर्व जन्म का संस्कार कह रही हूं, वही पूर्व जन्म में दो में डिवाइड था, माता पिता से मिला संस्कार और संग से मिला संस्कार। लेकिन अब चूंकि वो पूर्व जन्म क्रॉस करके मैं इस जन्म में आई हूं, वो मुझे याद नहीं है कि ये माँ बाप से मिला था या वातावरण से मिला था, तो मैंने उसको एक नाम दे दिया पूर्व जन्म के संस्कार। लेकिन वर्तमान में दिख रहा है मुझे ये दोस्तों की संगत में पढ़कर मेरी आदत बनी है, और ये तो मम्मी को देख देख के मेरी आदत पड़ गई है। तो कहा ये माता पिता से मिले संस्कार और ये दोस्तों से संगत से मिले संस्कार, तो ये ही दो उधर भी थे, परंतु अब हम नहीं बता सकते इसलिए उसको एक नाम दे दिया, और इसलिए ये हो गए तीन संस्कार हमारे पास। क्लियर हुई बात? और एक बताया कि दृढ़ता के संस्कार, कि ये जो तीन संस्कार है तो समझो वर्तमान में मेरे पास गुस्से करने का संस्कार है, क्रोधित होने का संस्कार है, तो हो सकता है कि मम्मी गुस्सा करती है तो इस कारण से आया है, हो सकता है दोस्तों के संग में रहने के कारण आया है, और हो सकता है कि वर्तमान में कहीं नहीं है तो पूर्व जन्म से आया है, ठीक है ना। परंतु ये संस्कार ठीक नहीं है, ये संस्कार ठीक नहीं है, इसको बदलना है। क्रोध नहीं करना है भाई साहब, शांत रहना है। बहन जी मेरे पास शांति नहीं, तो मैं शांत कहां से रहूंगा? शांति हो तो रहूं ना मैं, लेकिन बाबा ने बताया तुम्हारे पास है, बाबा ने बताया तुम्हारे पास है। तो ये जो हम कहते हैं सोल कॉन्शियस होकर जीना, उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, ये थोड़ी है। उसका मतलब यही है, आत्मा तो हूँ पर इसकी क्या विशेषता है? इसके पास संस्कार है, डिफॉल्ट संस्कार, ओरिजिनल संस्कार। कौन से है संस्कार? गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, बाप ने अपने ही संस्कार बच्चों में डाले हैं। उसको हम शांति का सागर कहते, तो बाबा ने कहा तुम शांत स्वरूप हो, शांति तुम्हारा स्वधर्म है। तो बताए ना सात संस्कार है या नहीं है हमारे पास, पर हम यूज नहीं कर रहे हैं। यूज करना माना उस सोल कॉन्शियस स्टेज में रहना, सिर्फ ये नहीं मैं आत्मा वो आत्मा सब आत्मा। हमारी जनरल प्रैक्टिस ऐसी चल रही है, लेकिन उसके थोड़ा गहरे उतरना है। मैं आत्मा वो प्राइमरी स्टेज थी, लेकिन हमेशा प्राइमरी स्टेज में ही बैठे रहेंगे क्या? भाई छोटे थे तो पहले ए बी सी डी पढ़ाने में पूरा महीना साल लगा दिया, किंडरगार्टन सारा उसी में चला गया केजी, लेकिन पहली दूसरी पहुंचते पहुंचते भी बस वही पढ़ते रहेंगे क्या? करना पड़ेगा ना आगे। लेकिन हम तो पहला वाला ही लेसन पकड़ के बैठे, मुझे इसको आत्मा देखना, मुझे अपने आप को आत्मा समझना है, जैसे कि तोताराम वाली बात हो गई ना। वो तो सोल कॉन्शियस जिसको कहते हैं ना, लिव इन प्रेजेंट। लिव इन प्रेजेंट माना क्या होता है? क्या होता है लिव इन प्रेजेंट? भगवान ने जब मुझे ज्ञान दे दिया है कि तुम सोल हो, तो प्रेजेंट जीवन में मुझे उसको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लेकिन अगर मैं उसको यूज नहीं कर रही हूं तो मैं प्रेजेंट में जी रही हूं क्या? जी रही हूं क्या मैं प्रेजेंट में? मैं वही पास्ट वाले संस्कार के अनुसार चल रही हूं ना, तो प्रेजेंट में जीना कहां हुआ मेरा? प्रेजेंट में भगवान आके हर दिन पढ़ा रहा है, हर दिन ज्ञान की बरसात कर रहा है। एक ही पर्पस है उसका, पावन बनाना। क्यों? क्योंकि हम पतित बन गए हैं, वो पावन बनाने के लिए आया है। तो ये जो मेरे संस्कार जिसको परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो संस्कार वो है जो मेरे ओरिजिनल संस्कार के अपोजिट है, तभी तो परिवर्तन की आवश्यकता है ना। वरना मेरे ओरिजिनल है तो उसको परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं, और वो परिवर्तन होने वाले भी नहीं है। पानी का स्वधर्म शीतलता आप चेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अग्नि का स्वधर्म उष्णता आप चेंज कर सकते हो, पर करना क्या पड़ेगा कि पानी का स्वधर्म शीतलता है, लेकिन उस पानी को हमने आग के ऊपर रख दिया, हीटर पर रख दिया, उसने गर्मी को एब्सॉर्ब कर लिया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। अभी हाथ लगाने से वो गर्म लग रहा है, मैं गर्म पानी को हाथ लगा कर भी अगर कहती हूं पानी का स्वधर्म शीतलता है, मैं सही बोल रही हूं कि गलत बोल रही हूं, सही बोल रही हूं या गलत बोल रही हूं। पानी गर्म है क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये पानी गर्म है, मैं क्या कह रही हूं, पानी का स्वधर्म शीतलता है। देखो स्वधर्म की परिभाषा को समझना होगा कि स्वधर्म माना क्या। जो स्वयं में निहित है, जिससे मैं बना हूं, जिसको मेरे से अलग नहीं किया जा सकता है, जिसको दूसरा शब्द अंग्रेजी में कहते हैं कोर क्वालिटी, कोर प्रॉपर्टी, स्वधर्म गुणधर्म। सूर्य की उष्णता आप छीन सकते हो? हाँ, उसको ढक सकते हैं बादल, पर छीन नहीं सकते आप उसको। जिस दिन सूर्य से आपने गर्मी छीन ली, जिस दिन सूर्य से आपने प्रकाश छीन लिया, मतलब वो सूर्य था ही नहीं। जिस दिन पानी की शीतलता आपने छीन ली, मतलब वो पानी था ही नहीं, वो कोई और चीज थी। स्वधर्म का मतलब होता है वो उसमें है, परंतु उसने कुछ और भी अपने ऊपर अक्वायर कर लिया है, हासिल कर लिया है। पानी ने गर्मी को अक्वायर कर लिया, तो अब उस पानी के ठंडक को, स्वधर्म को अनुभव करना है तो उस हीटर से उसको दूर करना पड़ेगा, आग से दूर करना पड़ेगा, थोड़ा समय उसको देना पड़ेगा जिससे कि वो अपनी गर्मी को रिलीज करे। सूर्य की उष्णता, ताप, सूर्य की रोशनी बादलों के कारण ढक गई है। वेट करना पड़ेगा कि बादल कब हटे तो सूर्य का प्रकाश अनुभव में आए, सूर्य की रोशनी अनुभव में आए। तो जब हम संस्कार परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि मेरे जो ओरिजिनल संस्कार हैं वो मेरे से कोई अलग नहीं कर सकता है। यही ओरिजिनल संस्कार लेकर तो हम धरती पर उतरे और कर्म किया, और उस कर्म से वो संस्कार रेडिएट हुए, प्यार और शांति के और खुशी के और आनंद के। लेकिन जब हम उतरे ना तो हम शरीर रूपी पिंजरे के अंदर कैद हो गए। वो जो आत्मा है, जो एक ज्योति का बिंदु है, जो प्रकाश का बिंदु है, जिस प्रकाश का स्वधर्म क्या होता है, रेडिएट होते रहना। एनर्जी का स्वभाव क्या है, वाइब्रेट होते रहना और आगे बढ़ते जाना। लेकिन उस एनर्जी ने जन्म लिया, मतलब इस बॉडी के अंदर कैद हुई, थोड़ा सा वो लिमिटेशन के अंदर बंध गई। आपने चंद्रमा को देखा है, पूनम के चांद को, पूनम के चांद को देखा है कभी? कैसा होता है पूनम का चांद? शीतल। और कैसे होता है, और कैसे होता है, कुछ देखा है उसमें? चंद्रमा अपने आप में गोल है, पूर्णिमा का चांद है तो पूरा गोल प्रकाशित है, लेकिन ये जितना गोल है उतना ही दूरी तक एक गोला है और वहां से फिर प्रकाश निकल रहा है। देखा है, देखा है ना? ये जैसे कि ये चंद्रमा हो गया, लेकिन चंद्रमा का जो प्रकाश बाहर फैल रहा है, यहां से नहीं, इधर एक गोला बनाया है उसने और वहां से बाहर फैल रहा है और वो जो गोला बना है वो भी प्रकाशित है। जो किरण निकल रही है वो उसमें से निकल रही है, जो बाहर का गोला तैयार हुआ है उसमें से निकल रही है उज्जवल श्वेत सफेद चमकता हुआ प्रकाश किरणें, है ना। ऐसे ही आत्मा भी जब उतरती है ना, तो ज्योति बिंदु तो कहा हमने, अपनी चारों तरफ वो भी ऐसा ही लाइट का कार्ब तैयार होता है, जिसको अगर आज की भाषा में समझने के लिए कहें तो जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में, माना कंप्यूटर अगर चलाना है तो हार्ड डिस्क में प्रोग्रामिंग्स भी डालनी पड़ती है ना, सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है ना, और फिर जिसमें से इंस्टॉल किया वो तो डिटैच, समझ में वो डिटैच पड़ी है कि जब दोबारा जरूरत पड़ेगी तो फिर से इसको यूज करके उसमें इंस्टॉल किया जाएगा। तो इंस्टॉल किया हमने, तो आत्मा भी क्या करती है, इंस्टॉल करती है वो अपने प्रकाश को, जिस प्रकाश में क्या है, सातों गुण भरे हैं। जैसे चंद्रमा में शीतलता भरी है ना प्रकाश में, सूर्य की रोशनी में क्या भरी है, गर्मी भरी है ना, तो रोशनी भी है लेकिन गर्मी भी है। चंद्रमा के प्रकाश में रोशनी भी है और ऐसे आत्मा के प्रकाश में रोशनी भी है और सुख शांति, जो सात गुण जो सात संस्कार है वो भी है। तो हमने प्रोग्राम इंस्टॉल किया, कंप्यूटर चलाया, नई नई और अच्छी खासी फाइलें बनाई और चलते चलते इधर उधर से डाउनलोड करके डाला और पता चला वायरस घुस गया। वायरस घुस जाता है ना, फिर बीच बीच में हैंग करता है, मेरे ओरिजिनल प्रोग्राम को डिस्टर्ब करता है, काम नहीं करने देता है, फिर बोलते एंटीवायरस डालना पड़ेगा, यही बोलते हैं। तो हम भी जब ऊपर से नीचे उतरे हैं, ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हमारे चित्त में, वो चित्त ही तो बोलेंगे और क्या बोलेंगे, शरीर के, आत्मा शरीर के अंदर है तो एक कवर उसके ऊपर शरीर का है, फिर मन है, फिर बुद्धि है, फिर चित्त, ये सब बोल रहे ना हम। आज बाबा ने क्षीर सागर की बात कही, क्षीर सागर में विष्णु लेटा पड़ा है और चेहरे पर क्या है, स्माइल है, और क्षीर माना दो। देखा कभी दुनिया में जिसने साथ, आज तो दुनिया छोटी हो गई है ना, टेक्नोलॉजी ने दुनिया को छोटा कर दिया है, हम भले अमेरिका नहीं गए हो फिर भी अमेरिका कैसा देख लिया है हमने। तो कहीं पर भी इतनी सारी जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ी, कहीं दूध वाला सागर आया समझ में, जानकारी में, जीके में आया क्या, कहीं है दूध वाला सागर? अगर होता भी वो दूध फटेगा नहीं क्या, और कितनी गायों ने दिया होगा, कितनी भैंसों ने दिया होगा, क्या सबका मिक्स दूध है, बकरी का, उसका उसका, क्योंकि सागर, सागर माने कितना दूध, आप सोच के तो देखो, सागर माने कितना दूध चाहिए, कितनी गायों ने दिया होगा, कितनी भैंसों ने दिया होगा, कितने गधों ने दिया होगा, कितने बकरियों ने दिया होगा, और फिर कैसा दूध जो फटे भी नहीं। इधर तो थोड़ा सा अगर विलंब हो गया भाई, दूध वाला देखे गया सवेरे में, शाम को घर पहुंची दूध फट गया, अरे बर्तन गलती से ना खटाई वाला यूज कर लिया,
पड़ गया।
सागर में तो हम लोग क्या क्या नहीं फेंक रहे हैं। कौन से सागर की बात कर रहे हैं बाबा? ये हमारा चित्त जिसमें आत्मा अपने पवित्रता को इंस्टॉल करती है, जिसको ही कहा तूने जग में भेजा मुझको देकर निर्मल काया। कौन सी इस काया की बात कर रहे क्या? नहीं, ये कवर के ऊपर कवर है ना, आत्मा के ऊपर। ये तो लास्ट कवरिंग सामने दिख रही है, मन की कवरिंग तो अंदर है ना, जैसे सूक्ष्म शरीर हम बोलते वो तो इसके भी अंदर है ना, उसके भी अंदर आत्मा है ना। फिर जब हम वतन में जाते हैं हम क्या विजुअलाइज करते, मैं फरिश्ता, ब्रह्मा बाबा को भी लाइट की दे, उसके अंदर है ना आत्मा, तो कवर के अंदर कवर, कवर के अंदर कवर की बात चल रही है ना सारी। तो वो चित्त ही हमारा क्षीर सागर है कि जिसमें आत्मा ने अपनी पवित्र ज्योति को इंस्टॉल कर दिया है, जिस ज्योति में वो सातों गुण है, और उसके आधार से फिर हम जीवन में आकर उसको रेडिएट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि पिंजरे के अंदर है, तो पिंजरे के अंदर रहने से हमारी आत्म ज्योति इसको भी टच हो रही है ना। एक टंकी होती है पानी के लिए, पानी स्टोर करने के लिए, और पानी का स्वभाव होता है बहते रहना। लेकिन टंकी माना मैंने पानी के लिए चार दीवारें खड़ी कर दी, उसको कैद कर दिया, तो फिर पानी जिसका स्वभाव है बहते रहना है, वो उन चार दीवारों की तरफ बहता रहता है और उसको टच करता रहता है, टच करता है, क्योंकि आगे उसको जाने की मार्जिन नहीं मिल रही है, तो वहीं पे जा जाके वापस लौटता है, फिर वहीं जाता है, फिर वापस लौटता है। और उस चक्कर में दीवार जो पहले बिल्कुल हमने, क्योंकि पानी स्टोरेज के लिए तो बिल्कुल साफ सुथरा, क्योंकि पानी पीना है वो वाला, हमें किचन में यूज करना है, तो बिल्कुल साफ सुथरी करके फिर हमने प्योर पानी उसके अंदर भरा है। लेकिन रोज टंकी साफ करोगे क्या? रोज करते हो? नहीं। तो रोज लेकिन पानी तो उसकी दीवारों से टकरा रहा है, टकरा रहा है, टकरा टकरा के, टकरा टकरा के चिकनाई तैयार किया, चिकनाई तैयार करके, चिकनाई तैयार करके काई तैयार किया, काई तैयार करके बैक्टीरियास तैयार किया, और वो सब पानी में, और वो ही पानी सप्लाई हो रहा है, और वो पानी पिया, वो पानी किचन में यूज हुआ। क्या हुआ? आज मैंने पानी पिया और मेरे पेट में खलबली मच गई है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है ना कैसे क्या, डॉक्टर साहब आज मैंने सुबह पानी पिया उसके बाद ऐसे हुआ है, तो डॉक्टर अंदाज लगा लेता है पानी में बैक्टीरिया होंगे, और कहता है वो टंकी वाला पानी नहीं यूज करना, या फिर फिल्टर करके पीना, प्योरीफाई करके पीना, गरम करके पीना, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वही तुम्हारे पेट में आके क्या कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं। ऐसे ही ये आत्मा इस शरीर के अंदर रही, बाहर उसी की प्रेजेंस में हम कर्म कर सके, और उसने इंस्टॉल किया था 7 संस्कार्स, तो वही हमारे बाहर रेडिएट हो रहे थे। लेकिन साथ साथ बॉडी भी तो बॉडी के अंदर ही है ना, तो इसलिए 2 युगों के बाद बॉडी कॉन्शियसनेस डेवलप हुई। वहां चिकना ही डेवलप हुई, काई डेवलप हुई, और काई के परिणाम से बैक्टीरिया डेवलप हुए। यहाँ पे धीरे धीरे सोल कॉन्शियस जो बाबा कहते हैं, कि सतयुग में नेचुरल सोल कॉन्शियस होगी जो यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं हमको, बहुत काल का अभ्यास, ऐसे नहीं कि अंतिम घड़ी तक मेरी सोल कॉन्शियस स्टेज पक्की हो, नहीं, अंतिम घड़ी आने से पहले ही मेरी सोल कॉन्शियस स्टेज पक्की हो। जैसे कि दादियों ने, बाबा ने 14 वर्ष की तपस्या में अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को नेचुरल कर दिया, नेचुरल किया ना उन्होंने, तब तो हम इतने सारे निकले। हमारे से कितने निकलते हैं लोग, उतनी पावर चाहिए ना, उतना हमारे से रेडिएट होना चाहिए ना वो। तो वो जो हमारे चित्त में, फिर ये जो बैक्टीरिया आ गया, माना बाबा ने क्या कहा, बॉडी कॉन्शियसनेस आते ही क्या होता है, कामनाएं, काम माना कामनाएं, वहां पे इच्छा मात्रम अविद्या, क्योंकि भरपूर है, भरपूर है ना वहां पे, तो कोई इच्छा उठती नहीं है। इच्छा करे किसकी, कमी हो तो करे ना, न चाहते हुए सब कुछ प्लेंटी में उपलब्ध है, करे तो क्या करे। लेकिन यहां आके वो एबुडेंस भी खत्म हो गया, प्लेंटी भी खत्म हो गई, क्योंकि संख्या आत्माएं उतर रही है, बढ़ रही है, और 9 लाख पूरी पृथ्वी को एंजॉय कर रही थी और धीरे धीरे संख्या बढ़ गई। पहले एक बच्चा था घर में, पूरा सुख भोग रहा था घर में, अब दूसरे तीसरे चौथे पांचवे बच्चे ने भी जन्म ले लिया है, बट गया ना, उतने में से ही बट गया ना। और बॉडी कॉन्शियसनेस आया माना द्वैत भाव आया, और सोल कॉन्शियस में थे माना मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, हम सब एक हैं। सिर्फ इस ड्रामा के अंदर एंजॉय करने के लिए हमारे पार्ट अलग है, लेकिन रेडिएट तो सबको वही गुण करना है, और कर रहे हैं, कर रहे हैं वो लोग। लेकिन फिर बॉडी कॉन्शियसनेस की चिकनाई हमारे को, सोल कॉन्शियस भूल गए, बॉडी कॉन्शियस में आए, कामनाएं जागी, कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आया, पूर्ति हुई तो लोभ आया, इस प्रकार से। हाँ, तो वो जो क्षीर सागर है, जो बाबा ने फिर कहा कि विष्णु तो क्षीर सागर में लेटा हुआ है और हम तो अभी विषय सागर में गोते लगा रहे हैं। विषय माना क्या होता है, इंद्रिया, इसका विषय है दृश्य, इसका विषय है आवाज, इसका विषय है स्वाद, तो वो जो चीजें हैं वही तो विषय हैं, और वहीं पे तो अटके पड़े हैं, और वो अंदर जाके बिठा दिए हमने, और उन्हीं की पूर्ति के पीछे लगे पड़े हैं। तब कहा कि विषय सागर में गोते लगा रहे हैं, तो वो पूर्ति नहीं हो रही तो गुस्सा आ रहा है, तो किसी के प्रति मोह हो रहा है, तो किसी चीज के प्रति लोभ आ रहा है, तो ये हो गया हमारे शीर सागर में वायरस घुस गया, घुस गया ना वायरस। अब जबरदस्त, जितना जबरदस्त वायरस उतना जबरदस्त एंटीवायरस चाहिए। तो जो बात थी ना कि संस्कार परिवर्तन करते हैं, थोड़े दिन होता है फिर वापस, तो शायद एंटीवायरस हल्का वाला डाला होगा, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी। और एंटीवायरस डालना माना ही अपनी सोल कॉन्शियस की स्मृति में रहना, हर कर्म होश में रह के करना, कॉन्शियस होकर करना, सचेतन होकर करना, कि मेरे पास शांति का संस्कार है, मेरे पास प्रेम का संस्कार है। भाग्य के नाम पर मेरे सामने कोई सिचुएशन आई है ऐसी जो मेरे को प्रतिकूल पड़ती है, जो मैंने कर्म किया था उसके परिणाम के स्वरूप भाग्य के रूप में ये बात मेरे सामने आई है, लेकिन अभी वर्तमान पुरुषार्थ मेरे हाथ में है। वर्तमान पुरुषार्थ मेरे हाथ में है, जब तक ज्ञान नहीं था टिट फाट टैट कर रहे थे। उसने गुस्सा किया तो मैं क्यों नहीं करूंगा, उसने एक चाटा मारा तो मैं दो चाटा मारा उसको। लेकिन अब मेरा किया हुआ मेरे सामने आया है, पहले उसने किया, उंगली उधर थी। सोल कॉन्शियस लाइफ माना लाभ कर्मा भी मुझे जो भी ज्ञान बाबा ने दिया है वो मेरे सामने हो बिल्कुल। लाभ कर्मा कहता है कोई चीज आपके सामने तब तक नहीं आ सकती जब तक आपने बोया नहीं है, लेकिन अगर आई है तो मैंने बोया है कभी, और बीज हमेशा अंधकार में रहता है इसलिए मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, फल रोशनी में होता है तो दिख रहा है। तो उंगली जो इधर जाती थी उंगली इधर हो जाए, इसको ही कहा जब तक हम यू टर्न नहीं लेंगे लाइफ में, बाह्य मुक्ता से अंतर्मुक्ता में प्रवेश नहीं करेंगे। अंतर्मुक्ता में आना माना ही यू टर्न लेना। ये सारी इंद्रियां बाहर लगी हुई थी, इन सारी इंद्रियों को भीतर मोड़ दिया, बाहर का नहीं सुनना है, नहीं देखना है, नहीं बोलना है, भीतर वाले को देखना है, सुनना है, बोलना है, बात करना है। और जब ऐसे करेंगे तो अंतरात्मा आवाज देगी, जो बात जीवन में आई है उसके लिए जो तुम्हारी उंगली उधर थी उंगली तुम्हारे पर है अभी। यू टर्न लेके अपने आप से कहना यू तेरे को बदलना है, हम बोलते थे तेरे को बदलना है, तेरे कारण सब ये हो रहा है, तू जब तक नहीं बदलेगा तब तक ये समस्या रहेगी, तेरे को बदलना पड़ेगा। लेकिन अंतर्मुखी हुए माना ये उंगली इधर, यू टर्न आपको टर्न होना है, हाँ इधर टर्न। और इधर मुझे क्या बदलना है कि आदतन, क्या कहते मजबूरी, क्या करूं मैं अपने संस्कारों से मजबूर हूं। तो हमारा हर कर्म मजबूरी में हो रहा है, कंपल्सिवली हो रहा है, बेहोशी में हो रहा है, अन अवेयरनेस में हो रहा है, मतलब मैं अभी भी बॉडी कॉन्शियस वाला जीवन जी रही हूं। सोल कॉन्शियस वाला जीवन जीना माना अब होश में जीऊं, कॉन्शियसली जीऊं। ठीक है, मेरे सामने मेरे पूर्व का कर्म आज भाग्य के रूप में सामने आया है, इसको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन वर्तमान मनोस्थिति को बदलना मेरे हाथ में है। मेरी मनोस्थिति जिसको मैं सोचती थी कि मेरे पास शांति है नहीं तो कैसे शांत रहूं, लेकिन सोल कॉन्शियस में रहूंगी, बाबा ने कहा है मेरी डिफॉल्ट है ये संस्कार, हमने उसको लंबे समय तक यूज नहीं किया तो जिस चीज को यूज नहीं करते हैं वो लूज हो जाती है, सिर्फ लूज हो गई है, पीछे दब गए हैं, पर है तो हमारे पास, हम यूज करना आरंभ करें। जिसको ही कहा पांच संस्कारों में से तीन तो एक पूर्व जन्म के, दो इस जन्म के, तीन ही थे ना वो, और बाबा ने कहा ये तुम्हारे ओरिजिनल संस्कार चार, पांचवा कहा दृढ़ता के संस्कार। दृढ़ता, बाबा मेरे साथ है, मेरे शांति प्रेम के संस्कार मेरे पास है, मैंने सिर्फ उसको यूज करना छोड़ दिया है। तो दृढ़ता रखनी पड़ेगी, मेरा वजन बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर ने नेचुरल डॉक्टर एलोपैथी से तो काम नहीं बना, वो तो कहता है ऑपरेशन करा के फैट को गलाने का नया तरीका निकला है। नेचुरोपैथी वाला कहता है थोड़ा सा क्या कर लो, उपवास कर लो, ऐसा भोजन खाओ जो फैट नहीं देता हो, ऐसा भोजन खाओ जो एनर्जी तो दे पर फालतू की चर्बी नहीं बढ़ाए और हो रहा है वेट कम। भगवान भी यही कह रहा है नेचुरोपैथी में, क्या प्रकृति ने जिस रूप में तुम्हें दिया है उस रूप में स्वीकार करो, प्लस प्रकृति को अपना काम करने के लिए थोड़ा सा विश्राम दो। नहीं तो सारा दिन डॉक्टर ने बोला है हर दो घंटे में खाते रहना है कुछ ना कुछ, और वो भी क्या बोले तो कभी बिस्किट तो कभी पॉपकॉर्न तो कभी मुरमुरा, तो सारा अनाज जिसको 16-16 घंटे लगते हैं पचने के लिए और हर दो दो घंटे में क्या कभी तो 5-5, 10-10 अंतराल में हम सब डाल रहे हैं, इसको रेस्ट दिया ही नहीं कभी। आपको पता होगा नोबल पुरस्कार कौन से इसको मिला है वैज्ञानिक को, जिसने ऑटोफेजी का कंसेप्ट दिया, इंटरमिटेंट फास्टिंग का कंसेप्ट दिया। बीमारियां ठीक नहीं हो रही एलोपैथी से, एलोपैथी को साइड रखो, सिर्फ और सिर्फ क्या करो इसको देना बंद कर दो, उपवास कर लो, खत्म बात। तो अपने अंदर इतनी दृढ़ता, उपवास जैसे यहां पर उपवास करना है जो मिर्च मसाले वाला भोजन, उसका दृढ़ता करके त्याग करना है। कौन सा खाना है? प्रकृति जिस रूप में दे रही है, आत्मा ने जो नेचुरली इंस्टॉल किए थे चित्त में संस्कार, उसको यूज करना है। ये रावण वाले बॉडी कॉन्शियस वाले संस्कार को नहीं यूज करना है, अटेंशन रखना पड़ेगा। जितना अटेंशन उतना ज्यादा परिवर्तन, जितना लूज उतना क्या होगा, और वो जो रावण वाला संस्कार और पक्का होगा। तो पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, भाग्य भी हमारे कारण से आया है, तो हमारे कारण से जब आया है और वो अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो बीती ताहे बिसार दे आगे की सुध ले। तो वर्तमान में जो आया है उसको जो बाबा कहते दुआएं दो, दुआएं लो, तो भले वर्तमान में वो बुरा वाला भी आया है ना, लेकिन अगर मैंने बाबा की इस बात को भी ध्यान में रखा है तो मेरे पास अच्छा भी जमा है और दोनों एट ए टाइम सरफेस पे आएंगे निकल के, बैगेज में जो भरा है ना जैसे उन्होंने भरा था एट ए टाइम निकल सकता है। होता है ना कई बार, आप देखो कि बुखार हो गया है, मुझे आज क्लास करानी है परंतु जबरदस्त बुखार भी हो गया है, लेकिन दृढ़ता रखी, पुण्य जमा है, उस बुखार में भी ताकत है कि बोल पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही लेक्चर देके पूरा हो गया पूरी ताकत चली गई, जाके लेट गए। तो वर्तमान में भी अगर हम इतना भी ध्यान रखें तो जो पास्ट वाला प्रतिकूल भी आ रहा है ना, हम उसको कंपेंसेट कर सकते हैं, हम उसको, इसीलिए क्यों कहते हैं दुआओं के खाते को बढ़ाओ। दुआएं वो चीज है जो आपको रॉकेट से भी अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ा सकती, विपत्तियों से बाहर निकाल सकती है। तो ये भी जो अगर मुझे लगता है कि मेरा क्रोध का संस्कार मुझे बहुत तंग कर रहा है, लेकिन राइट टाइम पे क्रोध का संस्कार भी शांत हो जाएगा और शांति के संस्कार से हम पेश आ जाएंगे। ये कब? जब सोल कॉन्शियस वाली जीवन जिएंगे। तो प्रारब्ध हो चाहे पुरुषार्थ हो, सब कुछ हमारे हाथ में है और इसलिए हमें ही करना है। ये बात नहीं कहनी है जब सब कुछ पहले से फिक्स है तो फिर हम करें क्यों, तो फिर हम करें क्यों। तो वो जो मंत्रियों का हाल हुआ वो हो जाएगा, है ना। तो वर्तमान को भी मैं कंपेंसेट कर सकती हूँ ना। इसीलिए देखो जो ज्योतिषी होते हैं ना, जो जन्म कुंडली लिखते हैं, आप अगर उनसे पूछो कि आपने जो जन्म कुंडली बनाई है ये ऐसा ही होगा इनके लाइफ में, वो कहता हाँ। किस आधार पे? क्योंकि मोस्टली लोग संस्कार परिवर्तन का कोई कदम उठाते नहीं है और ये जो कुंडली लिखी गई है वो संस्कार जो लेके आया है उसके तो उसी संस्कार से चलेगा और वही इसके सामने रिजल्ट आएंगे। और उनको कहो कि अगर ये व्यक्ति जिसकी कुंडली लिखी है उसने दृढ़ता से संस्कारों में परिवर्तन किया है, क्या ये कुंडली सत्य साबित होगी? कहता है बिल्कुल इनवैलिड हो जाएगी। ये वैलिड तब तक है जब तक वो संस्कार परिवर्तन नहीं करता है। तो क्लियर हुआ? कौन बड़ा? भाग्य बड़ा, पुरुषार्थ बड़ा? दोनों पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के आधार से भाग्य, भाग्य के आधार से पुरुषार्थ। ओम शांति।
सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।